بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث چل رہی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی. اَن يُحَاصَرُ إِلَى الْمَدِينَةِ, دشمن اتنے جری ہو جائیں گے کہ مدینہ تک محاصرہ کر لیں گے. اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے جو بتلایا گیا کہ دین اسلام کے دشمنوں کا حوصلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ مدینۃ المنورہ تک گھیراؤ کر لیں گے, محاصرہ کر لیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کا اقتدار خیبر تک بڑھ جائے گا, دشمنوں کی حکومت بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی, یہاں تک کہ خیبر تک ان کی حکومت بڑھ کر کے پہنچ جائے گی. تیسرا مطلب, مختلف علاقوں سے, دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئیں گے. چونکہ دنیا میں سب جگہوں پر فتنہ فساد ہے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ چلو اب مدینہ چلے جائیں, تو بہت سارے لوگ مدینۃ المنورہ آئیں گے. اب دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے, بہت سے لوگ تو مدینہ شہر میں اطمینان سے زندگی گزاریں گے مقیم, اور بہت سارے لوگ مدینہ کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر جا کر کے پڑاؤ ڈالیں گے. یحاصروا, مدینہ کا حصار کر لیں گے, یعنی مدینہ کی چاروں طرف کی سرحد پر مقیم ہو جائیں گے مدینہ کی حفاظت کے واسطے. تو گویا دنیا بھر سے آنے والے لوگ اور مدینہ کے مقیمین دو قسم پر. پہلی قسم جو لوگ مدینہ میں اطمینان سے اقامت پذیر, اور دوسرے لوگ جو مدینہ سے باہر جا کر مدینہ کا گھیراؤ کریں گے, اور گھیراؤ کر کے مدینہ کی حفاظت کے لیے مستعد اور تیار رہیں گے, دشمنوں کے مقابلے کے لیے مورچے پر ڈٹ جائیں گے. یہ دونوں طرح کے مفہوم اس روایت کے لیے گئے ہیں. اب یہ کب ہوگا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ دجال کے زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوگا, اور باشورا کا کہنا ہے کہ نہیں, دجال کے بھی بعد آخری دور میں یہ واقعات پیش آئیں گے. حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح, یہاں تک کہ ان کا سب سے دور کا مورچہ مقام صلاح ہوگا. صلاح اصل کے اندر مصالحہم مصلحت واحد, ہتھیار رکھنے کی جگہ, ہتھیار کا ڈیپو, لیکن بعد میں چل کر کے جہاں ہتھیار لے کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے اس جگہ کو بھی کہا جانے لگا, جس کو کہتے ہیں مورچہ. تو ان کا سب سے دور والا مورچہ صلاح نام کی جگہ ہوگی, اور صلاح یہ خیبر کے بالکل نزدیک میں ہے. گویا کہ خیبر تک دشمنوں کا گھیراؤ پہنچ جائے گا. تو لفظ مصالح مصلحتن ہتھیار کی جگہ کے لیے بھی بولا جائے گا, مورچے کے لیے بھی بولا جائے گا, اور جو لوگ مورچے کے اوپر ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. جی فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة وزاد بعض یہ حضرت زی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، نجاشی شاہ حبشہ کے بھتیجے ہوتے ہیں، اور جو نجاشی نے وہاں سے لوگوں کو مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اس میں یہ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اسی لیے ان کا لقب بن گیا خادم رسول اللہ. تو ان سے یہ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے، امن و امان والی صلح، صلحاً آمنہ، امن و امان والی صلح، یعنی مسلمانوں کا رومیوں سے آپس میں صلح کا معاہدہ ہوگا. اور امن و امان کی صلح کا کیا مطلب؟ مسلمان عیسائیوں کو نہیں چھیڑیں گے اور عیسائی مسلمانوں کو نہیں چھیڑیں گے، دونوں آپس میں مل جل کر کے قومی اکتا شانتی امن کے ساتھ رہیں گے، قومی یکجہتی کے ساتھ رہیں گے، اور ایسی صلح ہوگی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے بد عہدی اور صلح توڑنے کا خوف نہیں رہے گا، کہ مسلمان بھی عہد کے خلاف نہیں کریں گے، عیسائی بھی عہد کے خلاف نہیں کریں گے، مسلمان بھی جو ہے فساد نہیں کریں گے ان کے ساتھ، اور عیسائی لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ فساد نہیں کریں گے، ایسا اتحاد ہوگا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں. پھر تم اور وہ عیسائی مل کر اپنے ایک دوسرے دشمن سے لڑو گے. اندازہ یہ ہے کہ یہ دشمن یہود ہوں گے، مسلمان اور عیسائیوں کا اتحاد ہوگا اور دشمن یہودیوں سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے. ایسے قرآن میں بھی ہے، مسلمانوں کو عیسائیوں سے، عیسائیوں کو مسلمانوں سے مودت، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. جب تک یہ دو چیز رہے گی، قسیس اور روحبان، وہاں تک ان کے مسلمانوں کے ساتھ مودت اور اچھے تعلقات رہیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تو سارے عیسائی مسلمانوں سے کامل متحد ہو ہی جائیں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود ان کو کہیں گے کہ بھائی یہی مذہب اب برحق ہے، تو سارے جڑ جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ، تو اپنے ایک دوسرے دشمن سے لڑیں گے، اور اس لڑائی میں اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، سب کی مدد، مسلمان اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور وہ فاتح بنیں گے اور غنیمت کا مال حاصل کریں گے. وتسلمون، اور سلامت رہیں گے، یعنی مسلمان اور عیسائیوں کے لشکر کا جانی اور مالی کوئی نقصان نہیں ہوگا. حالانکہ جنگوں میں تو جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب جنگ ہوگی، مسلمان اور عیسائیوں کا جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر دشمن کو ہرانے کے بعد واپس لوٹو گے تم، ترجیو نا، دشمن کو ہرانے کے بعد تم واپس لوٹ کے آؤ گے محاذ سے، یہاں تک کہ تم پڑاؤ ڈالو گے، بی مرجن زی تلولن، مرج کہتے ہیں جانوروں کو چرانے کی جگہ، اور جانور ہری بھری جگہ میں چرائے جاتے ہیں، سوکھی اجڑ بنجڑ جگہ پر جانور کو کوئی نہیں چراتا، اس لیے مرج کا کیا معنی کرنے کا، ہری بھری زمین जहां जानवरों को चराया जाता है, ऐसे इलाके के अंदर तुम पड़ाव डालोगे और वो जगह टीलों वाली होगी, यानी वहां हमवार मैदान नहीं होंगे, छोटे बड़े टीले होंगे, चाहे रेत के टीले होंगे चाहे मिट्टी के टीले होंगे, लेकिन टीले वाली जगह पर तुम और ईसाई लोग पड़ाव डालोगे। अब जाहिर है कि हरी भरी जगह पर पड़ाव डालेंगे तो लश्कर के जानवर घास वास जरा चर लेवे, खा पी लेवे, और जगह हरी भरी है तो वहां पानी भी होगा कुदरती, तो मुजाहिदीन भी उसमें से पानी पी लेंगे, वो भी पानी इस्तेमाल कर लेंगे। एक नसरानी आदमी सलीब को ऊंचा करेगा, यानी यहां के पड़ाव डाला, एक नसरानी सलीब को ऊंचा करेगा। सलीब को कहते हैं क्रॉस, वो इस तरह के निशान का होता है। इन लोगों का जाम ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को उसके ऊपर सूली पे लटकाया गया था, हालांकि सूली पे लटकाने वाली बात ही सही नहीं है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, सूली का वाकया ही पेश नहीं आया हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथ, लेकिन बस ये चल पड़ी बात है ईसाइयों में कि सूली के ऊपर उनको लटकाया गया था, इसीलिए वो सलीब को बड़ी अजमत देते हैं, गले में सलीब लटकाते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का जो अव्वल एडिशन है उसके अंदर साफ लिखा हुआ मौजूद है कि गले के अंदर जो टाई पहनी जाती है वो उसी सलीब का निशान है, ये अव्वल एडिशन में है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर। इसीलिए हमारे पुराने अकाबिरिन जैसे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जैसे जो लोग टाई पहने, उनके मुतालिक उन हजरात का तो नजरिया ये था कि उसका ईमान ही हिल जाता है, ईमान से ही वो गड़बड़ उसकी हो जाती है, वो कदीम नजरिए की बुनियाद के ऊपर। अगरचे बाद वाले हजरात ने उसमें तकफीफ की बातें लिखी है। फयकूलु गलबा सलीबु, और वो ईसाई कहेगा कि सलीब की वजह से गलबा हुआ, सलीब की बरकत से फतह हुआ, ये कहेगा वो ईसाई, यानी ये जो जंग में हम दुश्मनों के सामने जीते ये सलीब की बरकत है, सलीब की बरकत से ये फतह हुई है। फयगदबु रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात में से एक आदमी गुस्से में आ जाएगा। है क्या बोला, सलीब की बरकत से फतह हुई, क्या बोला तू, गुस्से में आ जाएगा एक मुसलमान, जलाल में आ जाएगा। और क्यों जलाल में आएगा, मुसलमानों के अकीदे के सरासर खिलाफ, इसलिए कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनु मा, मदद का वादा तो अल्लाह ने लिया है और फतह अल्लाह देते और तुम निस्बत करो सलीब की तरफ, इसीलिए उस मुसलमान को गुस्सा आएगा कि ये कैसा हमारे अकीदे के खिलाफ बकवास कर रहा है। और दूसरी बात ये होगी कि गैरुल्लाह की तरफ फतह की नुसरत की निस्बत करना बहुत बड़ी नाशुक्री और बेअदबी है, कि फतह की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गैरुल्लाह की तरफ सलीब की तरफ निस्बत हो रही है, जो बड़ी बेअदबी नाशुक्री नाकदरी की बात है। इसीलिए एक मुसलमान जलाल में आएगा। फयदुक्कुहु, वो सलीब को तोड़ डालेगा, कि सलीब की बरकत से फतह हुई, तो सलीब को कहे तू अपने आप को बचा, देखो मैं सलीब को इतनी बचा, तो वो सलीब खुद को इतनी बचा सकी, मैंने तोड़ डाला सलीब को। बस उस मौके पर रूमी लोग गद्दारी करेंगे। मालूम हुआ कि हर मजहब वाले को अपने मजहबी निशानात से तबीयी मोहब्बत होती है, कोई उनका मजहबी निशान तोड़े तो गुस्सा आ जाना, लड़ाई हो जाना एक तबीयी और फितरी चीज है, हर मजहब वालों में ये होता है। आज सिर्फ मुसलमान को बदनाम करते हैं वो गलत है। तो सलीब तोड़ी जाएगी तो ईसाई लोग गुस्से में आ जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए मुजतमे हो जाएंगे। यानी वो मुआहदे अमन खत्म हो गया और अब ये ईसाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। बाज रावियों ने यूं भी ज्यादती की, फयसूरुल मुस्लिमून इला असलिहतिहिम, मुसलमान लोग अपने हथियार की तरफ लपकेंगे। यानी जब ईसाई लोग तैयारी करेंगे तो मुसलमान कोई जो है कॉल बांध के थोड़ी खड़े रहेंगे चुपचाप के अल्लाह अकबर के जो है हाथ बांध के खड़े रहे हैं, कि वो तैयारी कर रहे हैं चलो अपने भी लपको अपने हथियारों की तरफ। फयकततिलून, और गमसान की लड़ाई करेंगे। फयुकरिमुल्लाहु तिलकल इसाबति बिशहादा, उस जमात का अल्लाह ताला शहादत से इकराम करेंगे। यानी उसमें जो लोग ईसाइयों के खिलाफ मारे जाएंगे अल्लाह के यहाँ वो शहीद कहे जाएंगे और शहादत भी अल्लाह के दरबार में बहुत बड़ा इकराम है। चलो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। क्या फरमाया, हबशियों को उनके हाल पे रहने दो, हबशियों को उनके हाल पे छोड़े रहने दो जब तक के वो तुमको छोड़े रखे, जब तक के वो तुमको छोड़े रखे। यानी जब तक हबशी लोग तुम मुसलमानों के ऊपर हमला न करे तुम्हें भी उनके साथ लड़ाई नहीं करने की, तुम्हें भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने की, हमला नहीं करने का, हबशियों को उनके हाल के ऊपर छोड़े रखो। हाँ अगर वो मुसलमानों पर हमला करे तो मुसलमान दिफा में जोरदार जवाब देवे, बाकी हबशियों को छेड़ने का नहीं जब तक के वो तुमको ना छेड़े। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान में तो ये इरशाद फरमाया وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, ईमान नहीं लावे तो किताल का हुक्म है, फिर हबशियों को क्यों छोड़ देने का, उनकी क्या खसूसियत। तो आगे वाली रिवायत के अंदर तुर्क का लफ्ज भी है, लिहाजा दोनों कौम को सामने रख करके हदीस सवाल का जवाब समझो। नंबर एक, हबशा और तुर्क का इलाका मक्का और मदीना से काफी दूर है, बीच में रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके हैं, समंदर है, और वहां तक सफर करके जिहाद के लिए जाना इसमें बहुत सारी तकलीफ और मशक्कत है। इसीलिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के इलाके से हबशा का इलाका तुर्क का इलाका काफी दूर, मशक्कत भरा सफर, वहां तक कहां तुम इतने दूर दूर तक उनसे लड़ने के लिए जाओगे, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, जब तक वो तुम्हारे साथ न लड़े हबशी और तुर्की लोग वहां तक उनको उनके हाल पे छोड़े रखो। एक मतलब ये है जवाब इश्काल का। दूसरा जवाब समझो, ये हदीस उस दौर पर महमूल की जाएगी जब मुसलमानों को अभी इस्तेहकाम और मजबूती हासिल नहीं हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर इस्लामी हुकूमत शुरू दौर में हिजरत के बाद अभी इतना जमाव और इतनी मजबूती नहीं थी, तो कहा अभी तो यहाँ जज़ीरतुल अरब में इतना इस्तेहकाम नहीं, अभी इतनी मजबूती नहीं, अभी तो यहाँ मुशरिकीन और यहूदियों के कितने कबाइल है, और तुम उनको छोड़कर हबशा और तुर्क तक लड़ने जाओ, वहां अभी मत जाओ। गोया उस दौर पर महमूल है जब अभी मुसलमानों को खुद अरब के इलाके के अंदर इस्तेहकाम और मजबूती हासिल नहीं हुई थी। कहा अभी दूर तक मत जाओ, अभी तो तुम जो है यही मजबूत हो, फिर आइंदा देखा जाएगा उनके साथ जंग का मामला। कुरान में आयत है ना, उसमें भी यही तरतीब है, यलू नकुम मिनल कुफारी वल यजीदू फीकुम गिलजा, ऊपर से पढ़ो, कातिलुल्लदीना यलू नकुम मिनल कुफार, यानी पहले उन काफिरों से मुकाबला करो जो तुम्हारे करीब है, यलू नकुम, जब उनसे फारिग हो जाओ तो आगे बढ़ने का। तो अब तुर्क और हबशा तो अरब से बहुत दूर है, अभी तो यहाँ अरब में यहूद और बाज मुशरिकीन कबीले कुछ रह गए, पहले उनसे निमटो फिर आगे का मामला इख्तियार किया जाएगा। इस पर हदीस को महमूल किया जाएगा। फिर आगे इरशाद फरमाया, इसलिए कि काबा का खजाना नहीं निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला। काबा का खजाना जो निकालेगा वो एक हबशी आदमी आएगा जो छोटी पिंडली वाला होगा। साक की तस्कीर है सुवैक जो सुवैकतैन, जिसकी पिंडलियां छोटी पतली होगी, ऐसा हबशी आकर के काबा का खजाना निकालेगा। उससे मुराद बादशाह ने हबशा के बादशाह को मुराद लिया है, और बाज ने हबशी बादशाह के पूरे लश्कर को मुराद लिया है कि वो आकर के काबा का खजाना निकालेंगे। अब काबा का खजाना का क्या मतलब? नंबर एक, जमाने जाहिलियत के अंदर अरब लोग जो काबा का तवाफ उमरा हज वगैरह करते थे तो बड़ी मकदार में नजरो नियाज चढ़ाते थे काबा के नाम पर। तो वहां बड़े बड़े घड़े कुएं खोदे गए थे, उसके अंदर वो नजरो नियाज दफन कर दी जाती थी। तो कहा वो जो जमाने कदीम के अंदर काबा पर चढ़ाई जाने वाली नजरो नियाज मन्नतें सोना चांदी सब जो चढ़ाया हुआ दफन किया गया है, वो ये हबशी बादशाह निकालेगा आखिरी दौर के अंदर। नंबर दो, बाद हजरात ने काबा के खजाने से मुराद लिया है काबतुल्लाह के नीचे और उसके अतराफ में कुदरती तौर पर बड़े खजाने मदफून हैं, मादिन और कान की शक्ल में। जैसे दुनिया में माइंस होते हैं मादिन कान, तो काबा के नीचे और काबा के अतराफ में भी सोने चांदी की बड़ी बड़ी काने हैं, माइंस है, मादिन है। तो कहा वो कौन निकालेगा? कहा हबशा का एक बादशाह या लश्कर निकालेगा। और तीसरी तौजीह बाज हजरात ने ये की है, एक मखसूस खजाना मुराद है, मखसूस खजाना काबतुल्लाह के नीचे, और वो हबशी आदमी आके निकालेगा। लेकिन यहाँ एक इश्काल पैदा होता है। आगे रिवायत आ रही है कि हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में रिताजुल काबा, काबा का खजाना खोद करके निकाला जाएगा, और यहां आया कि हबशी निकालेगा। तारुज हुआ जाहिर में, तो उस तारुस का पहला हल समझो। यहां मुराद है हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अनुहो के बाद का खजाना। अव्वल तो काबा के नीचे जो मदफून खजाइन है वो हजरत मेहदी निकालेंगे और उसको जंगों के खर्चे में इस्तेमाल करेंगे, और जो दूसरे खजाइन हैं वो ये हबशी निकालेगा। एक जवाब तो ये दिया गया है। उसके बाद तीसरी बात कि ये जमाना कौन सा होगा ये खजानों के हबशी के निकालने का। तो अक्सर शुर्राह किराम यहां पर ये फरमाते हैं बिल्कुल दुनिया के आखिरी अय्याम का ये किस्सा है जब पूरी रुए जमीन कुफ्र से भर जाएगी, एक भी आदमी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, कुफ्र फिस्क से दुनिया भरी होगी, ऐसे जमाने के अंदर ये वाकिया पेश आएगा। और जाहिर बात है कि ये वाकिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बहुत बाद का ये किस्सा है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर तो दुनिया में अल्लाह अल्लाह जारी होगा, लेकिन उनके बहुत बाद के जमाने के अंदर ये वाकिया पेश आएगा। कैसे दौर में ये फितना पेश आएगा कि कुरान उठा लिया गया होगा, हाफिजों के सीनों में भी कुरान नहीं रहेगा, औराक में भी कुरान नहीं रहेगा, ऐसे दौर के अंदर का ये वाकिया है बिल्कुल आखिरी जमाने के अंदर। तो एक और सवाल इस रिवायत पर पैदा होता है कि भाई एक हबशी को इतनी हिम्मत होगी कि हरम में आकर के फितना मचावे और काबा खोद करके नीचे से खजाना निकाल लेवे। हालांकि अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के लिए क्या फरमाया, हरमन आमिना वहाजल बलदिल अमीन, तो फिर वहां कैसे ऐसी जंग करके हबशी काबिज बनेगा। याद रखो रिवायतों में है कि दुनिया में कयामत की शुरुआत काबा से होगी, दुनिया की शुरुआत भी काबा से हुई और कयामत की शुरुआत भी काबा से होगी। जहां से दुनिया बनना शुरू हुई वहां से दुनिया खत्म होना शुरू होगी। अव्वल इन अव्वल बैतिम वुदी अली नास, जलालैन में आप पढ़ोगे कि पानी के ऊपर एक हरकत पैदा हुई, फिर उसमें एक बबूला उठा और उस बबूले को अल्लाह ने अपनी कुदरत से मिट्टी से तब्दील फरमाया और उसी मिट्टी को फैलाकर ये पूरी दुनिया की मिट्टी बनी। तो अव्वलन पानी में जहां हरकत पैदा हुई, बबूला तैयार हुआ परपोटा, और उस बबूले को खुदा ने मिट्टी से बदला, वो मिट्टी है काबतुल्लाह की मिट्टी जहां इस वक्त काबा है। तो दुनिया की शुरुआत काबा से और खत्म कैसे होगी दुनिया का, एक हबशी गुलाम आएगा लंबा लश्कर लेकर जिसका आगे वाला हिस्सा काबा के पास होगा और जिसका पीछे वाला हिस्सा जिद्दा के दरिया में होगा, और वो काबा को तोड़ना शुरू करेगा। इससे मालूम हुआ कि ये बिल्कुल आखिरी जमाने का किस्सा है। अब सवाल वही आया वहाजल बलदिल अमीन और हरमन आमिना, तो उसका एक जवाब समझो कि हरमन आमिनन का मतलब ये है कि कयामत के करीब करीब जमाने तक अल्लाह ने हरम को अमन वाला बनाया, लेकिन जब बिल्कुल आखिरी दिन आ जाएंगे तो जैसे कि एक दुकानदार बार खेमा लगा करके दुकान लगाता है और अपनी दुकान की पूरा दिन हिफाजत हिफाजत, लेकिन शाम हुई तो वही सब लपेटना शुरू करता है ना। तो कहा जब तक अल्लाह ताला को इस कायनात की बज्म को सजाना मकसूद है वहां तक हरम अमन वाला है, और जब बज्म कायनात को अल्लाह सुबहानहु व ताला लपेट लेना चाहेंगे तो फिर हरम ही से अमन खत्म कर दिया जाएगा और वहां से दुनिया का फना होना शुरू हो जाएगा। तो हरमन आमिनन ये मुकय्यद है कुर्बे कयामत तक, न के ऐन कयामत तक। समझ में आया पहला जवाब। दूसरा जवाब नंबर दो, आयते करीमा में गालिब अहवाल मुराद है, हर वक्त हर जमाना हर दौर मुराद नहीं है, कि गालिब हालात में हरम पुर अमन है। बाज मरतबा हरम का अमन बाकी न रहे तो ये हरमन आमिनन के मुखालिफ नहीं है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक जमाने के अंदर हज्जाज ने हमला किया, काबतुल्लाह के पर्दे जलाए, इमारत मिसमार की मिंजनीक लगवाई, देखो उस वक्त कहां गया हरमन आमिनन, देख लिया। तो हर वक्त हर दौर मुराद नहीं है, हरमन आमिनन गालिब अहवाल यानी ज्यादातर हालात काबतुल्ला पर ऐसे आएंगे कि वो अमन वाला होगा। कभी कभार उसमें इधर उधर भी हो जावे, तो जो गालिब अहवाल होते हैं वो मुस्तस्नियात के जरिए से उस पर एतराज होता नहीं है। नंबर तीन, तीसरा जवाब समझो, हरमन आमिनन का मतलब है अहले मक्का को खिताब कि ए मक्का वालो तुम हरम को अमन वाला बना के रखो कि कोई आदमी मक्का आवे तो उसको मारने का नहीं, उस पर जुल्म नहीं करने का, उस पर ज्यादती नहीं करने की। तो हरमन आमिनन के अंदर मुखातब है अहले मक्का कि मक्का वालो तुम हरम के अमन को बरकरार रखो। लेकिन अगर अहले मक्का ही हरम का अमन बरकरार न रख सके तो फिर क्या होगा? ये तीनों मतलब जो है रिवायत के लिए गए, जवाब दिए गए इस काल के। चलो अब ये खजाने की हिस्ट्री बहुत लंबी है, खजाने की हिस्ट्री बड़ी लंबी की है। वो जुहूर मेहदी किताब में मैंने इमाम कुर्तुबी के हवाले से तफसीर कुर्तुबी से वो पूरी लंबी रिवायत नकल की है कि वो खजाना कैसे आया, कैसे गया, फिर कैसे दोबारा आएगा, इस वक्त दुनिया में कहाँ है, पूरी लंबी रिवायत वहां है, वो देख लेना उसमें। चलो, वान रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो यहाँ रावी का नाम नहीं है, लेकिन एक उसूली बात याद रखने की, किसी सहाबी का नाम मजहूल होना ये रिवायत की मजबूती के ऊपर किसी तरह का असर नहीं करती। इसलिए क्या सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, हर सहाबी अदूल है। इसीलिए सहाबा में कोई अगर मजहूल है, मजहूलुल इस्म है, तो फिर उसकी वजह से रिवायत की सनद पर कोई असर पड़ता नहीं। हाँ, नीचे के रावी कोई मजहूल होवे तो फिर वो सनद मुतकल्लम फी हो जाती है। काल दउल हबशता, हबशियों को छोड़े रखो जब तक के वो तुमको छोड़े रखे, यानी तुम उनसे तारुज न करो यहां तक के वो तुमसे तारुज न करे, और तुम तुर्कियों को भी उनके हाल पर छोड़े रखो जब तक के वो तुमको छोड़े रखे यानी तुमसे तारुज न करे। जी हजरत बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लंबी हदीस नकल की, उसका ये जुज है। फी हदीस इनका क्या मतलब, एक लंबी हदीस है उसका ये टुकड़ा है कि तुम एक कौम से लड़ोगे जिनकी आंखें छोटी छोटी यानी तुर्की लोग। ये यानी का लफ्ज रावी का बढ़ाया हुआ है, वजाहत रावी की हुई है। क्या इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम उन दुश्मनों को, उन दुश्मनों को धकेल दोगे, तसूकू नहुम, ऐसे तो हकालने के माने में आता है, यानी उनके साथ जंग करके लड़ाई करके उनको हकाल दोगे, धकेल दोगे। जैसे कोई कहे ना कि ये लोग मेरे घर में घुसे थे ना, तो मैंने धक्के मार के बाहर कर दिए इनको, तो कहा ये लोग तुम लोगों पर हमले करेंगे लेकिन तुम उनको धकेल दोगे लश्करी ताकत के जरिए से। कितनी मरतबा? तीन मरतबा, तीन मरतबा तुम उनको धकेल दोगे, यहां तक के उनको जजीरतुल अरब की सरहद से पार करा दोगे। यानी ये लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने आएंगे लेकिन तुम उनको ऐसा जोरदार तमाचा मारोगे, मुंह तोड़ मुकाबला करोगे कि उनको भगाते 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 जजीरतुल अरब के पार कर देंगे। گویا اہل اسلام ان دشمنوں پر غالب آ جائیں گے اور ان دشمنوں کو بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیں گے، اور ایسا مجبور کریں گے کہ ان دشمنوں سے جزیرت العرب کو خالی کرا دیں گے۔ اب تین مرتبہ کا تذکرہ ہے، تین مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب تم ان کو دھکیلو گے اور بار کرو گے، تو جو ان دشمنوں سے بھاگ گیا وہ نجات پا گیا، یعنی دشمنوں میں سے جو بھاگ نکلا وہ بچ جائے گا، جان بچے گی اس کی۔ دوسری مرتبہ جو جب تم دھکیلو گے تو بعض تو بچ جائیں گے اور بعض تمہارے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جب تیسری مرتبہ تم ان کو دھکیل کے باہر کرو گے تو تم ان کا استیصال کر ڈالو گے، یعنی ان کو بالکل لیا ختم کر ڈالو گے، ان کا ان کو مٹا دو گے، نیست نابود کر دو گے۔ یعنی تیسری مرتبہ کے حملے کے اندر ایمان والے ان دشمنوں کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ او کما قال، دیکھیے ان حضرات کی کمال دیانت ہے کہ حدیث کے الفاظ نقل کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں، او کما قال۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ مضمون، اس کا خلاصہ، آج کل کہتے ہیں نا مفہوم، وہ تو یہی ہے۔ البتہ حضور کے نورانی الفاظ مجھے پورے طور پر یاد رہے نہیں، اسی لیے کہہ دیا او کما قال۔ اور ہمیشہ یہ عادت بناؤ کہ حدیث شریف کے الفاظ اگر آدمی کو پورے طور پر یاد نہ ہو تو کہہ دینے کا کہ اس طرح کی بات حضور نے فرمائی، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حدیث کا نچوڑ یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا ماحصل یہ ہے، اس طرح کہنے کا۔ یہ نہیں کہ سیدھے کہہ دینے کا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، تو اگر الفاظ میں ادھر ادھر ہو گئی تو آدمی وعید کا مستحق ہو جائے گا۔ من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے حضور کی طرف غلط بات نسبت کرے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جگہ دیں گے۔ اسی لیے حدیثیں ٹھوکنے کی نہیں، الٹ ٹب حدیثیں ہانکنے کی نہیں۔ بہت سے حضرات نے کام کیا نا، یہ موضوعات جو لکھی گئی، موضوعات ابن جوزی کی، موضوعات دوسرے حضرات کی، یہ کیوں لکھی گئی؟ کہ وہ لوگ جو ہے حدیثیں ٹھوکم ٹھوک کرتے ہیں، تو ائمہ کرام نے موضوعات کو باقاعدہ جمع کر دیا۔ اس زمانے میں بھی موضوعات جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ان جملہ موضوعات کے آپ نے بیانوں میں بہت مرتبہ سنا ہوگا، خاص طور پر کہ حجت الوداع کے بعد جس صحابی کا گھوڑا جدھر تھا انہوں نے اس جانب میں دوڑا دیا اور دین کے خاطر دنیا میں نکل پڑے۔ سنا ہے اس طریقے سے باتیں؟ کہاں ہے ایسا؟ حجت الوداع کا بیان پڑھو، مشکات میں بھی ہے موجود، بخاری میں بھی پڑھو گے۔ سارے صحابہ جہاں سے آئے تھے وہاں گئے، مدینہ والے مدینہ گئے، حضرت علی وغیرہ وہاں سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا تھا، وہاں سے آئے تھے۔ تو جو حضرات جہاں سے آئے تھے وہ وہاں چلے گئے، کدھر کا گھوڑے کا منہ نے کہاں چلے گئے، یہ سب ایسی داستان ہے۔ چلو، تو حدیث ٹوکنے کی نہیں، خلاصہ یہ۔ جی، ثلاث فرق،
ثلاث فرق، فرقة يأخذون في أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكوا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقابلونهم وهم الشهداء، رواه أبو داود رحمه الله۔
دیکھو، یہ یاد رکھنے کا، ابو بکر صدیق الگ ہیں اور ابو بکرا صحابی الگ ہے، دونوں الگ الگ ہیں، دو الگ نام کے صحابی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکرا، دونوں میں فرق ذہن رکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایک پست زمین میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ غائط کا ترجمہ ہر جگہ پر استنجا نہیں کرنے کا، یہ تو دراصل وجہ کیا کہ پرانے زمانے میں آج کی طرح بیت الخلا بنے ہوئے نہیں تھے، لوگ باہر استنجا کرنے جاتے تھے تو پست نیچی جگہ میں بیٹھتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اسی لیے پھر اصل تو غائط کا معنی آتا ہے نیچی زمین، بعد میں چل کر وہ استنجے کی جگہ کے لیے استعمال ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ پست علاقے میں پڑاؤ ڈالیں گے، یعنی جو زمین اونچائی پر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں پست علاقہ، سمندر کی سطح سے پست علاقہ، اور اس جگہ کا نام بسرہ وہ رکھیں گے، ایک نہر کے پاس جس ندی کا نام دجلہ رکھا جائے گا۔ دیکھو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا معجزہ ہے یہ حدیث، اس لیے کہ روایت میں لفظ بسرہ آیا، کیا مراد؟ تو بعض شعرا تو کہتے ہیں کہ وہی بسرہ مشہور شہر مراد ہے جو اس وقت عراق کے اندر آتا ہے، بسرہ ہمارے بہت سے حضرات بصری ہے، بصریین کا ایک طبقہ ہے مستقلاً، تو بسرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آباد ہوا، پہلے یہ باقاعدہ شہر نہیں تھا، اسلامی لشکر کی چھاونی وہاں ہوئی، اور حضرت عمر کے ایک کرنیل تھے عتبہ ابن غزوان، انہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور مشورے سے۔ گویا حضور نے فرمایا نے کہ ایک پست زمین کے اندر میری امت ٹھہرے گی اور وہاں شہر آباد کرے گی، اور حضرت عمر کے مبارک زمانے میں بسرہ شہر آباد ہوا، آپ کے ایک جرنیل نے اس کو آباد کیا۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ یہاں بسرہ سے مراد ہے بغداد، بغداد شہر مراد ہے بسرہ سے، اور وہ لوگ قرینہ کیا لاتے ہیں، یقال لہ دجلہ، کہ وہ ایک ایسی ندی کے کنارے کے اوپر ہوگا جس کو دجلہ کہا جاتا ہے، اور دجلہ ندی کے کنارے پر بغداد واقع ہے، دجلہ فرات جنتی ندیوں میں سے ہیں، سیحون جہون انہار جنت میں سے ہیں، دجلہ فرات وغیرہ یہ سب ندیاں، تو یہ بغداد کے اندر بہتی ہے یہ دجلہ ندی۔ اب جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہاں بغداد مراد ہے، تو پھر حدیث میں حضور نے بسرہ کیوں فرمایا؟ تو اس کی توجیہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اصل میں بغداد کا نام ہے بغداد البصرہ، پورا نام ہے بغداد البصرہ، لیکن کثرت استعمال سے مضاف الیہ کو لوگ حذف کر کے صرف بغداد 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 بولتے ہیں۔ اب میں آپ کو پوچھوں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کا گاؤں کون سا ہے، تو آپ کہو گے خان پور، یہی کہو گے نا، حضرت کے گاؤں کا نام ادھورا آپ نے بتلایا، ان کے گاؤں کا نام ہے خانپور دیہ، لیکن کثرت استعمال سے لوگ دیہ بولتے ہی نہیں ہیں، پورا نام ہے خانپور دیہ۔ تو اس طریقے سے ہوا کہ اصل میں نام ہے کیا بغداد البصرہ، لیکن وہ بصرہ کو اڑا دیا اور صرف بغداد بغداد لوگ بولنے لگے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کا مجموعہ مل کر کے پورا بغداد شہر تیار ہوا، جیسے اپنا ممبئی چھوٹے چھوٹے گاؤں سب، ویلے پارلے، وسئی، اندھیری، اجالی، یہ سب کے چھوٹے چھوٹے مختلف گاؤں، یہ سب کا مجموعہ مل کر کے کیا ہو گیا کہ ممبئی۔ اس طریقے سے وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا بسرہ، اور اطراف میں دوسری چھوٹی چھوٹی آبادیاں، वो सब का मजमुआ मिल करके फिर बगदाद शहर बना। तो जो एक छोटा गांव उसकी निस्बत से उसको बगदादुल बसरा कहा गया है। और वो दिजला नदी के किनारे के ऊपर होगा और उस नदी के ऊपर पुल भी होगा, सारी पेशिनगोइयां, पुल भी होगा दिजला नदी के ऊपर, और वहां की आबादी बहुत ज्यादा होगी। बगदाद की आबादी बहुत ज्यादा। वयकूनु मिन अमसारिल मुस्लिमीन, और वो मुसलमानों के बड़े शहरों में से होगा। वाकई बगदाद इस्लाम का अजीम शान मरकज रहा। हमारे अइम्मा किराम भी सब बगदाद में रहे। हजरत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, खुद हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे भी बहुत सारे अइम्मा आलम बगदाद से ताल्लुक रखते हैं हमारे हजरत। तो कहा वो इस्लामी शहरों में से एक बड़ा शहर बनेगा। फिर जब दुनिया का आखिरी जमाना आएगा तो बनू कतूर कंतूरा के लोग वहां हमला करने आएंगे। बनू कंतूरा के लोग वहां हमला करने के लिए आएंगे। बनू कंतूरा से कौन मुराद? नंबर एक तुर्क कौम मुराद है, तुर्क कौम। इसलिए कि तुर्क कौम के जद्द अमजद ऊपर जाकर के एक दादा का नाम आता है कंतूरा, और वो लोग बगदाद के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। नंबर दो, हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेही सलात वसलाम की एक बांदी का नाम था कंतूरा, उससे जो औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हुई, ये तुर्की और चीनी कौम उसी की औलाद मानी जाती है, तो वो कहलाते हैं बनू कंतूरा। और बाज लोगों ने उसकी बेहतरीन ताबीर की है तातारी कौम, जैसे कि आगे रिवायत के अंदर आ रहा है, चौड़े चेहरे वाले छोटी आंखों वाले। देख लो चीनियों को, तातारियों को, चौड़े चेहरे और छोटी आंखें, और वो लोग दिजला नदी के किनारे के ऊपर पड़ाव डालेंगे। जब बनू कंतूरा का लश्कर वहां हमला करने के लिए आएगा और दिजला के किनारे के ऊपर पड़ाव डालेगा तो बसरा वाले तीन हिस्सों में बट जाएंगे। बसरा के लोग तीन पार्टियों में तकसीम हो जाएंगे। इसलिए कि जब ऐसे हालात आते हैं ना तो हर एक में थोड़ी फिक्र होती है कि चलो मुकाबला करो हालात का। लोग तीन तरह के हो जाएंगे। पहला फिरका कौन होगा? एक जमात, एक टीम, एक गिरोह ऐसा होगा जो गायों की दुमों को पकड़े रहेंगे, जंगल में पनाह लेंगे। गायों की दुम पकड़ने वाले, क्या मतलब? कि उन लोगों को दुश्मन आए और दुश्मन ने हमला किया और बुरे हालात है, उससे कुछ लेना देना नहीं, उनको तो अपनी गाय भैंस जो पाली हुई है बस उसी की फिक्र लगी हुई होगी। और वो कहेंगे हमारी तो गायें बहुत है ने, हमारे जानवर बहुत है ने, उसी की देखभाल करने की हम कहां दुश्मन का मुकाबला करने आएंगे। गोया बाना करेंगे अपने जानवरों के नाम का और हालात का मुकाबला करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी हम अपने कारोबार में हालात जो होने हो होते रहे, हमें क्या लेना देना, इस तरह कहने वाले लोग होंगे। नंबर दो। दूसरा मतलब ये है कि बाज लोग अपने गाय बैल जानवरों को लेकर जंगल में चले जाएंगे कि हमें लड़ना बढ़ना नहीं है, शहर में रहना भी नहीं है, हमला करने आए हैं, चलो अब तो हम जंगल में चले जाते हैं। नंबर तीन, गाय बैल की तिजारत करने वाले, गाय बैल के कारोबार में मशगूल रहने वाले और गाय बैल के जरिए से अपनी खेतियों में मशगूल रहने वाले। कि हमें तो गाय बैल की तिजारत करने की और बैल के जरिए हमारी खेतियां करने की, हमको खेती करने दो, हमें दुश्मन के मुकाबले से कोई लेना देना नहीं, बाने करने वाले। चौथा मतलब, जो लोग अपना सामान गाय बैल के ऊपर लाद करके बगदाद छोड़ के निकल जाएंगे और एक शहर से दूसरे शहर घूमते फिरेंगे, बंजारों जैसी जिंदगी बना डालेंगे कि चलो अब हमारे शहर पर तो हमला हो गया, इसीलिए अब अपना सामान जानवर पर लादो। टेम्पो तो हो थे नहीं उस जमाने में, तो कहा जानवर के ऊपर सामान लादो और चलो एक शहर से दूसरे शहर। क्या मतलब हदीस शरीफ का? दुश्मनों से वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे जंगलों में निकल जाएंगे बरिया जंगल में चले जाएंगे, चाहे वो लोग जो है खेतियों में लग जाएंगे, चाहे एक शहर से दूसरे शहर फिरेंगे। मतलब क्या? जान ये दुश्मन से जान बचाने की फिकर करेंगे। लेकिन क्या होगा? वहलकू, मौत आकर उनको पकड़ लेगी, दुश्मन उनको भी छोड़ेंगे नहीं। मालूम हुआ कि जान बचाने की बतेरी तदबीर ये लोग करेंगे लेकिन उनकी तदबीर कारगर होगी नहीं और दुश्मन उनको हलाक करके रहेंगे। क्या अच्छा होता कि भागते नहीं और दुश्मन का मुकाबला करके शहीद होते, तो जन्नती होते। ये तो जान बचाने गए और मरे, मुजरिम हुए। तो एक जमात ये हो गई। दूसरी जमात वफिरकतुन याखुजून लिअन्फुसिहिम वहलकू, दूसरी एक जमात, एक गिरोह, एक मजमा ऐसा होगा जिनको अपनी जान को बचाने की फिक्र होगी। याखुजून लिअन्फुसिहिम, अपनी जान के लिए अमान लेंगे, अपनी जान के लिए अमान लेंगे। क्या मतलब? खुद जाएंगे वो दुश्मनों के पास और दुश्मनों को जाके कहेंगे हमको मत मारना, हम तुम्हारे साथ है, तुम हमको मत मारना। इस तरीके से सामने जाकर के उन लोगों से अमान तलब करेंगे, दुश्मनों से मिलजुल जाएंगे और अमान तलब करेंगे। कहते हैं कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब हलाकू खान तातारी ने, मंगोलियन हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया, तो उस जमाने के अंदर मुस्तासिम बिल्ला खलीफा था बगदाद का, तो खुद खलीफा मुस्तासिम बिल्ला और बहुत सारे लोग हलाकू खान के पास गए और जाकर के अमान तलब किया कि भाई हमको मारना मत, हम आपके साथ आपसे अमान तलब करते हैं। ये सन 7वीं सदी हिजरी का वाकया है जब तातारियों ने बगदाद के ऊपर हमला किया और बड़ा खतरनाक हमला किया तातारियों का। वो तारीख के अंदर पढ़े तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमाम इब्ने कसीर बिदाया में जब उनके हालात लिखते हैं तो वहां क्या लिखते हैं? या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश के मेरी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया होता तो तातारियों के जुल्म को देखने का मुझे मौका नहीं मिलता। ऐसे मजालिम हुए थे बगदाद के अंदर, लाखों की तादाद में मुसलमान का कत्ल आम और दिजला नदी के ऊपर मुसलमानों की लाश से पुल बने और कई दिनों तक दिजला नदी का पानी जो है लाल बहा है। और जब मुसलमानों का कत्ले आम हुआ तो फिर इन्होंने इल्मी यादगारों को बर्बाद किया, बड़े बड़े कुतुब खाने बगदाद के इल्मी, जिसमें बड़ी बड़ी हदीस की तफसीर की किताबें, वो दरिया में डाली, पानी में डाली। तो फिर बाद में दिजला नदी का पानी काला काला बहने लगा रोशनाई की वजह से, लाशों के अंबार हुए तातारियों के हमले के वक्त के ऊपर। ये उस वाकई की तरफ हदीस के अंदर इशारा है। वहलकू, फिर भी वो लोग हलाक होंगे, यानी दुश्मन से पना लेने जाएंगे लेकिन दुश्मन पना देगा नहीं बल्कि उनको मार डालेगा। और ऐसा ही किया हलाकू खान ने, मुस्तासिम बिल्ला और खलीफा वगैरह गए लेकिन उन सबको अमान नहीं दी और सबको मार डाला। तीसरी जमात, एक तीसरी जमात ऐसी होगी जो अपनी औलाद को अपनी पीठ के पीछे रखकर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए निकलेंगे। वहुम शुहदा, वो अल्लाह के नजदीक बड़े शहीद का दर्जा पाने वाले होंगे। अब अपनी औलाद को पीठ के पीछे रखने का क्या मतलब? क्या औलाद को पीठ के पीछे रखकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? यानी औला अयाल की कोई परवाह नहीं, भाई देखो अब तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी जाने, मैं तो दीन के दुश्मन से मुकाबला करने चला, तुमको अल्लाह के हवाले कर दिया। बीवी बच्चों को कहा कि तुमको अल्लाह के हवाले, मैं तो चला दुश्मनों का मुकाबला करने। एक मतलब ये खल्फज ओरिम का। दूसरा मतलब ये कि बीवी बच्चों को भी मैदान में साथ लेके जावे कि तुम मेरे पीछे रहो, अब मैं दुश्मन से मुकाबला करता हूं, ताकि तुम्हारी वजह से मैं मैदान छोड़ के भागू नहीं। आदमी अकेला हुए तो भाग भी जावे, लेकिन बीवी बच्चे हुए तो भाग न जावे। इसीलिए अपनी औलाद और बीवी बच्चों को साथ लेके जाके पीछे खड़ा रखेंगे, ताकि उनकी शर्म में भाग न जावे और मैदान में डट के रवे। ऐसे लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहुम शुहदा, वो अल्लाह ताला के यहां शहादत का मर्तबा पाएंगे। अच्छा एक सवाल, बीवी बच्चों को पीछे रख कर के मुकाबले का वाकिया और किस जगह मिलता है?
करबला
ना, दौरे रिसालत में। कल तलाश करके लाना। और ये फितने तातार, समझो मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का अजाब था। तातारी फितना अल्लाह का अजाब था। यहां तक बुजदिली छा गई कि एक तातारी औरत आती थी और किसी जगह 200-400 मुसलमान का मजमा होवे, उनको कहती थी कि सब यहां खड़े रहो, अभी मेरे पास छुरी नहीं, मैं घर जाती हूँ, छुरी लेके आती हूँ, फिर तुमको जबा करती हूँ। तो मुसलमान पर इतनी बुजदिली छा गई थी कि औरत तातारी घर जाती, घर जाकर के छुरी लेके आती और इनको कहती सब सो जाओ, वो सब सो जाते थे, फिर वो उनको जबा करती थी। अजाब था मुसलमानों के ऊपर फितने तातार जो हुआ वो। चलो अल्लामा इकबाल का कोई शेर याद है किसी को फितने तातार के ऊपर? कोई बताएगा इकबाल का शेर फितने तातार के ऊपर? है आया यू रिशे तातार के अफसाने से, मिल गए पासबां काबे को सनम खाने से। हे आया यू रिशे तातार के अफसाने से मिल गए पासबां काबे को सनम खाने से। यानी एक दौर गुजरने के बाद फिर वही तातारी ईमान लाए और उसी तातारी में से इस्लाम के बड़े बड़े जो है मुजाहिदीन तैयार है। पूरी मुगल कौम तातार ही तो है, मुगल तातार में से हैं और दूसरी भी बहुत सारी कौम है, तैमूर भी सब तातारी लोग है। चलो पूरी करो रिवायत। खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने साल खिदमत की हजरत अनस ने? 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अनस लोग एक नया शहर बनाएंगे। पेशीन गोई, हुजूर के जमाने में ये सब शहर नहीं थे, कब बाद में मेरे बाद नए शहर आबाद करेंगे, और उनमें से एक शहर होगा जिसका नाम बसरा रखा जाएगा। फइन अंत मररत बिहा, अरे अनस अगर तुम्हारा गुजर उस शहर से होवे, अगर तुम्हारा गुजर उस शहर से होवे, औ दखलतहा या तुम उस शहर में दाखिल होवो। यानी हजरत अनस को हुजूर ने खुशखबरी दी कि उन नए शहरों में भी तुम्हारा जाना होगा, अल्लाह तुम्हें ले जाएंगे ऐसे नए नए शहरों में भी। ये बशारत हो गई हजरत अनस के लिए, क्योंकि उनके लिए हुजूर ने माल और औलाद की कसरत की दुआ की थी। उनकी अम्मी ने कहा था कि हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो हुजूर ने माल और औलाद की कसरत की दुआ की। हजरत अनस के कितने बच्चे हुए? 100 के ऊपर हुए, 100 के ऊपर हुजूर की दुआ की बरकत। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि अनस अगर ऐसे शहर के अंदर तुम्हारा गुजर होवे फैया कव सिबा खहा, तो उस शहर की खारी जमीन से अपने आप को दूर रखना, उस शहर के खारी जमीन से तुम अपने आप को दूर रखना, यानी उस शहर के अंदर जो समंदर के लग करके जो इलाके होते हैं जहां नमकीनी होती है, जमीन नमकीनी हो। देखो बहुत सी जगहों के ऊपर समंदर न होने के बावजूद जमीन खारी होती है, समंदरी इलाकों में तो होती ही है, गुजराती में उसको खार पाट कहते हैं, खारी जमीन, अरबी में उसी को सिबाख कहा जाता है। लेकिन ये राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तानों के अंदर भी समंदर से दूर भी बास जमीनें ऐसी खारी होती है, नमकीनी। तो कहा ऐसे इलाके के अंदर तुम मत जाना, वहां से दूर रहना। क्यों ऐसे इलाके से दूर रहने का हुजूर ने उनको हुक्म दिया? कहा उस एरिए के लोग खबीस होंगे, उस इलाके में बसने वाले लोग कैसे होंगे? खबीस। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम को कहा ऐसे एरिया में जाना वाना मत, अगर बसरा भी जाना होवे तो उससे दूर रहना। जैसे कहा जाए कि भाई बॉम्बे जाना लेकिन चौपाटी पे मत जाना, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट आके अपना काम निमटा के आ जाना, चौपाटी घूमने मत जाना। इस तरीके से कहा तुम बसरा जाओ लेकिन वो खारे इलाके में मत जाना। नंबर दो, वकल्ला, कत्तान के वजन पर कल्ला, यानी वहां एक दूसरी जगह है जिसको कल्ला कहा जाता है, वहां से भी तुम अपने आप को बचा के रखना। बास कहते हैं कि बसरा की बंदरगाह है कल्ला, और जो कला यकलउन से कल्ला लेते हैं वो क्या कहते हैं? बसरा की चराहगाह का नाम है कल्ला, यानी बसरा में जानवरों को चराने का जो इलाका है वो कल्ला, या बसरा की जो बंदरगाह पोर्ट वो कल्ला। तो क्या वहां से अपने आप को दूर रखना, वहां से अपने आप को बचा बचा करके रखना। वह नखीलहा, और खजूर की बाड़ियों वाले इलाके से भी अपने आप को दूर रखना और बचा के रखना। वसू कहा, और बसरा की मार्केटों और बाजार से भी अपने आप को दूर रखना। व बाब उमराइहा, और वहां के अमीरों के दरवाजों से भी अपने आप को दूर रखना, यानी अमीरों के महल, अमीरों के दरबार से भी अपने आप को दूर रखना। देखो भाई, ये सब जगहों पर जाने से हुजूर ने क्यों मना किया? इसलिए मना किया कि खजूर की बाड़ियां और बाजार, वहां तमाम मामलात गैर शरई होते होंगे। बाजारों में और खजूर की बाड़ियों में अय्याशियां हो रही होगी, दीन ईमान और गैरत के खिलाफ काम हो रहे होंगे, हराम कारियां हो रही होगी। इसीलिए तुम अपने आप को ऐसी खजूर की बाड़ियों से बचा बचा के रखना। आज फार्म हाउसों में क्या हो रहा है? बाड़ियों में जो लोग मकान बनाते हैं वहां नेकी कम और गुनाह ज्यादा, अय्याशियां ज्यादा। इसीलिए हजरत अनस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह बाड़ियों से अपने आप को बचा बचा के रखना, मार्केटों और बाजारों से बचा बचा के रखना, और अमीरों के दरवाजे पर मत जाना, इसलिए कि वो जालिम होंगे, और जाविलों में को दरवाजे पर मत जाना। तो कहां रहना? वलैका भी दवाहीहा, जाहियतुन की जमा दवाही, शहर का किनारा, कॉलोनी, शहर का किनारा और कॉलोनी बाहर बनी हुई का, वहीं पर तुम पड़ाव डालना। शहर के बाहर, शहर के अंदर जाना वाना मत। इसीलिए कुरान में है ना, वजा मिन अक्सल मदीना थी रजुलुई यस आ, और दूसरी जगह क्या है, वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीना। तो जो लोग शहर के किनारे पर रहते हैं ना, वो शहर के बीच की गंदी सियासत, गंदी पॉलिटिक और गंदे माहौल से पाक होते हैं। शहर के किनारों पर रहने वाले, शहर के बाहर रहने वाले, इसलिए कुरान ने भी दो मकाम के ऊपर उनकी तारीफ आई, दोनों जगह के ऊपर अक्सल मदीना आया, शहर के किनारे के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी जगह है, आपको भी अगर किसी कॉलोनी में मकान मिलता हो तो वो लेने का, वहां आदमी सलामत रहता है शहर के बीच में रहने के मुकाबले के अंदर। तो कहा कि तुम शहर के कॉलोनी और किनारे के ऊपर रहना, क्यों, फइन्नहु यकूनु बिहा खस्फुन व कज़फुन व रजफुन, इसलिए के शहर के अंदर अल्लाह का अजाब आएगा, शहर के अंदर अल्लाह ताला का अजाब आएगा।